छायावादी काव्य के अगले कवित्री हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न, महादेवी वर्मा के काव्य के छायावादी स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, अथवा महादेवी वर्मा छायावाद के प्रतिनिधि कवित्री हैं, इस कथन की समीक्षा करते हुए उनके काव्य के छायावादी स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, अथवा महादेवी वर्मा की रचनाओं में छायावाद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप दिखाई देता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सप्रमाण उत्तर दीजिए, अथवा प्रमाणित कीजिए कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं, अथवा छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन। इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां वस्तु और शिल्प अथवा भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही क्षेत्रों में नवीनता का संदेश लेकर छायावाद का आगमन हुआ। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस शैलीगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वस्तुगत प्रवृत्तियां, वैयक्तिकता तथा आंतरिक अनुभूति, अतीन्द्रिय प्रेम का चित्रण, विषाद भावना अथवा दुखवाद की अभिव्यक्ति, इसे हम निराशा एवं वेदना अथवा करुणा की विवृत्ति कह सकते हैं। प्रकृति पर चेतना का आरोप, रहस्य भावना, सौंदर्य एवं श्रृंगार भाव की अभिव्यक्ति, नवीन मानवतावादी जीवन दर्शन। शिल्पगत विशेषताएं, छायावाद की कविता कल्पना प्रधान होने के कारण कुछ अस्पष्ट भाव जगत से संबद्ध रहीं। इस कारण उसकी भाषा शिल्प भी उसी के आधार पर कोमल और अस्पष्ट है। सूक्ष्म अप्रस्तुत विधान एवं लाक्षणिक मूर्तिमत्ता शैली शिल्प की प्रमुख विशेषता है। इसकी भाषा शिल्प से संबंधित सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। कोमल कांत संस्कृत निष्ठ पदावली, भाषा में संगीतात्मकता, शब्द विधान में ध्वन्यात्मकता, अलंकारिकता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता तथा मुक्त छंद का प्रयोग। महादेवी वर्मा और छायावाद। अब देखना यह है कि महादेवी वर्मा के काव्य में छायावादी काव्य की विशेषताएं कहाँ तक प्राप्त होती हैं। वस्तुगत प्रवृत्तियां, पहला वैयक्तिकता तथा आंतरिक अनुभूति। छायावाद के कवियों ने अपने काव्य में समाज चित्रण की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व और हर्ष विषाद को ही प्रधानता प्रदान की है। प्रसाद ने आंसू में अपने वियोग विगलित हृदय के अश्रु बहाए हैं। पंत ने ग्रंथि में अपने मन की गांठ खोलकर रख दी है। निराला ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों से अपनी वैयक्तिक भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति की है, तथा महादेवी वर्मा ने अपनी व्यक्तिगत वेदना के संसार को विविध रंगों में रंगकर प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में और व्यक्तित्व के मध्य एक अविच्छिन्न संबंध की प्रच्छन्न धारा दिखाई देती है। इसी तथ्य को लक्ष्य करके मानव जीवन में यह मंतव्य प्रकट किया है कि महादेवी वर्मा के गीतों के मूल में एक क्षीण सी कथाधारा बहती है। महादेवी वर्मा की रचनाएं इनके जीवन काल में आने वाले विविध पड़ावों के समान हैं। निहार और रश्मि में अधिकांशतः कवित्री के मन की कोमल स्निग्ध और उल्लासमयी भावनाएं व्यक्त हुई हैं। अतीन्द्रिय प्रेम का चित्रण, छायावादी कविता की अभिव्यक्ति में प्रेम तत्व के ऊपर अलौकिकता का आवरण पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे अतीन्द्रियता कहा जाता है। इन्होंने ऐसे अवसरों पर प्रतीकों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी ने अपने प्रेम का जो आलंबन प्राय बताया है उसका स्वरूप विराट एवं विशाल है और जो अलौकिक है। विषाद भावना, महादेवी वर्मा ने भी विविध प्रकार से विषाद भावना एवं दुखवाद की अभिव्यक्त की है, किंतु एक भिन्न प्रकार से। महादेवी जी को सुख की अपेक्षा दुख अधिक प्रिय रहा है। इस संदर्भ में उनका कथन दृष्टव्य है। सुख और दुख के धूप छाही डोरे से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना, क्योंकि इतना प्रिय है वह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है। संसार जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है, परंतु उस पर दुख की छाया नहीं पड़ सकी। कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी। विषाद भावना कवित्री को इतनी प्रिय है कि उसे उसके बनाए रखने के लिए वह अमरों के लिए लोक को भी नगण्य समझाती है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव अरे यह मिटने का अधिकार। प्रकृति पर चेतना का आरोप। प्रकृति के प्रेम छायावाद की कविता की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रायः समस्त मान्य शैलियों में प्रकृति के वर्णन लिखे हैं। प्रकृति पर चेतना का आरोप तथा प्रकृति का मानवीकरण छायावाद के प्रकृति वर्णन की बड़ी मौलिक देन है। महादेवी वर्मा के काव्य में यह भी विशेषता मिलती है। वह रजनी का मानवीकरण करती हुई कहती है कि रजनी ओढ़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली, उसके बिखरे वैभव पर जब रोती थी उजियाली। स्वच्छंदता का वर्ण छायावाद की प्रमुख प्रेरणा रही है। परंपरा और प्राचीन के प्रति विद्रोह इसका मुख्य लक्षण है। सिद्धांत रूप में इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अभिव्यक्तियों अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था, और यह तो आज भी उपयुक्त लगता है। नारियोचित शालीनता एवं व्यक्तिगत सात्विकता के फलस्वरूप महादेवी जी में प्रणयानुभूति की अभिव्यक्ति में वासना की प्रवृत्ति अद्यांत संयत बनी रहती है। प्रणयानुभूति की अभिव्यक्ति में वासना का लेश भी परिलक्षित नहीं होता है। उसमें हमें सर्वत्र पूजा अर्चना के सात्विक उपकरणों का प्रयोग दिखाई देता है। रहस्य भावना। छायावाद की कविता में रहस्य भावना की इतनी अधिक अभिव्यक्ति हुई है कि छायावाद और रहस्यवाद का अटूट संबंध परिलक्षित होता है। इन कवियों ने अपनी रहस्य भावना को प्रायः जिज्ञासा और कौतूहल के रूप में ही प्रकट किया है। महादेवी वर्मा की कविताओं में भी रहस्य भावना प्रचुरता से उपलब्ध है। शून्य नभ में उमड़ जब दुख भार सी, नये सितम में सघन छा जाती घटा, बिखर जाती जुगनुओं की भांति भी जब सुनहले आंसुओं की हार सी, तब चमक जो लोचनों को मूंदता तड़ित की मुस्कान में कौन है। सौंदर्य एवं श्रृंगार भाव की अभिव्यक्ति। छायावाद काव्य में प्रेम भाव का प्रचुर चित्रण हुआ है। वह लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही प्रकार की अभिव्यक्ति की है। पारलौकिक पक्ष में इनकी प्रेमाभिव्यक्ति सत्य की सीमा का संस्पर्श करती हुई दिखाई देती है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में प्रणय के अनेक रूपों को व्यक्त किया है। विशेषता यह है कि इन्होंने पार्थिव तथा प्राकृतिक प्रेम का चित्रण कहीं नहीं किया। इनका एक भी गीत ऐसा नहीं है जिसमें पार्थिव आलंबन के प्रति इंद्रिय वासना की अभिव्यक्त की गई हो। अलौकिक आलंबन के प्रति उनकी जो कल्पना है वह भी न हृदय की कोमलता के अनुरूप भव्य और विराट है। लौ न बत्ती को जाना है, वर्ती ने यह स्नेह स्नेह ने रज का अंचल पहचाना है। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रणयानुभूति का सर्वत्र उन्नयन कर दिया है। उनके काव्यगत प्रेम को कल्पित प्रेम की संज्ञा दी जा सकती है। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने इनकी सौंदर्यानुभूति का यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। महादेवी जी की समस्त निधि इसी को एक की आराधना में अर्पित है। हृदय के समस्त भाव उसी को समर्पित है। अतएव महादेवी जी की उक्तियों में अनुभूति का भेद चाहे जैसा हो सौंदर्य में अंतर कहीं नहीं आता। उसी को के ऐश्वर्य से प्रकृति भी ऐश्वर्यमयी ही दिखती है। नवीन मानवतावादी जीवन दर्शन। रविंद्र टालस्टॉय गांधी आदि युग पुरुषों ने विश्व मानव की वंदना की और इस प्रकार एक नवीन मानवतावादी जीवन दर्शन का उद्भव और विकास हुआ। महादेवी वर्मा के काव्य में भी इस नवीन मानवतावादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। जर्जर समाज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती हुई वह कहती है, कह दे माँ क्या देखूँ, देखूँ खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिरी यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूँ। कवयित्री की करुणा और तरलता में इस विशाल विश्व की मंगल कामना नीत है, जैसे सिद्धार्थ की करुणा में अखिल विश्व के जीवों का कल्याण, महादेवी के प्रत्येक स्वर से मधु के युग निश्रित होने की स्वर्णाशा सदा से संचार करती आई है। वे कहती हैं कि अब मेरे सूलों पर सतदल मधु के युग होंगे अवलंबित, मेरे क्रंदन से आत्म में के दिन सावन हरियाले होंगे। ख शिल्पगत विशेषताएं। पहला, संस्कृत निष्ठ कोमल कांत पदावली छायावादी काव्य आदर्शवादी काव्य धारा है। तदनुरूप इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। कोमल कांत कल्पना के अनुरूप कविता की पदावली भी कोमल कांत है। सकुच सलज खिलती से फाली, अलस मौलश्री डाली डाली, बुनते नव प्रभात कुंजों में रजत श्याम तारों से जाली। भाषा में संगीतात्मकता। दूसरी, महादेवी वर्मा को संगीत का अच्छा ज्ञान है। इनकी कविता में संगीतात्मकता का सुंदर पुट दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप भाषा विशेष प्रभावशाली एवं प्रभावयुक्त बन गई है। जैसे शुक्लाभिसारिका मुग्धा वसंत रजनी की श्रृंगार सज्जा देखिए, तारकमय नवबेड़ी बंधन, शशि फूल कर शशिका नूतन, रश्मि बलय सित घन अवकुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी। शब्द विधान में ध्वन्यात्मकता। अंग्रेजी की कविता में तदर्थ व्यंजना का बड़ा महत्व रहा है। छायावाद की कविता में यह बहुत लोकप्रिय रहा है। महादेवी जी की कविता में भी जैसे अवसर इसके दर्शन होते हैं। यथा शुक्लाभिसारिका मुग्धा वसंत रजनी के आभूषणों को रुंझुन सुनते ही बनती है। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पद्मों की किंकड़ी, भर पथ पथ गति में अलस तरंगड़ी, तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मित से सजनी। अलंकारिता। संस्कृत निष्ठ कोमल कांत पदावली के फलस्वरूप छायावाद की कविता में अनुप्रास छटा तो सर्वत्र दिखाई ही देती है। महादेवी जी की कविता में भी अनुप्रास की छटा व्याप्त है। कहीं कहीं यमक का भी प्रयोग पाया जाता है। जगत जगत की भूख प्यास, इनकी कल्पना के साथ अर्थालंकार स्वयं ही आ जाते हैं। इनकी उक्तियों में अलंकार बहुत ही स्वाभाविक रूप में उलझे हुए दिखाई देते हैं। एक उदाहरण देखिए, फूलों की मीठी चितवन नभ की ये दीपावलियां, पीले मुख पर संध्या के वे किरणों की फुलझड़ियां, विधु की चांदी की थाली मादक मकरंद भरी थी, जिसमें उजियारी रातें लूटती घुलती मिश्री थी। इन पंक्तियों में उपमा रूपक तथा रूपक अतिशयोक्त अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग दिखाया गया है। उपमा और मानवीकरण महादेवी जी को विशेष प्रिय हैं। कहीं कहीं इन्होंने अंग्रेजी के मानवीकरण तथा ध्वन्यार्थ व्यंजना के अतिरिक्त विशेषण विपर्य का भी खूब प्रयोग किया गया है। इन दीवानी चोटों, चोट दीवानी नहीं है परंतु दीवानी है वह नायिका जिसने विरह की चोट खाई है। सूक्ष्म अप्रस्तुत विधान एवं लाक्षणिक मूर्तिमत्ता। सूक्ष्म अप्रस्तुत विधान एवं लाक्षणिक मूर्तिमत्ता छायावादी कविता का एक महत्वपूर्ण बहिरंग तत्व है। महादेवी वर्मा के भावों का साकार चित्र प्रस्तुत करने में बहुत सिद्धहस्त हैं। थोड़ी सी रेखाएं और थोड़े से रंगों से उभरते हुए चित्रों के समान ही इनकी कविता में भी अल्प शब्दों से अंकित अनेक सुंदर चित्र विद्यमान हैं। इनका अप्रस्तुत विधान भी इनकी कला को उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। निम्न उदाहरण देखिए, तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर धनसार सुरक्षित। प्रतीकात्मकता। प्रतीक विधान छायावाद के शिल्प का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इन कवियों ने प्रकृति के पदार्थों का प्रतीक रूप ग्रहण किया है। महादेवी जी ने दीपक, कमल अथवा सर्प को क्रमशः आत्मभावना और पीड़ा के रूप में ग्रहण किया है। कहीं कहीं दीपक प्रेम का भी प्रतीक है, जैसे दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। फिर तुमने क्यों भूल बिछाए, अरे सॉरी क्षमा करिएगा, इसे फिर तुमने क्यों सूल बिछाए। नीचे के उदाहरण में सौरभ कलिका क्रमशः जीव और ब्रह्म के प्रतीक बनकर आए हैं। वह सौरभ हूँ मैं जो उड़कर कलिका में लौट नहीं पाती। इस प्रकार हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने लाक्षणिकता, मानवीकरण, चित्रात्मकता, प्रतीक योजना आदि विशेषताओं के समावेश द्वारा अपनी कविता को छायावादी कला सौष्ठव प्रदान किया है तथा चिर प्रचलित स्थूल उपमानों के स्थानों पर सूक्ष्म मौलिक उपमानों के को प्रयुक्त करके अपनी रचनाओं में एक विचित्र अनूठापन भर दिया है। विधु की चांदी की प्यारी प्याली, मादक मकरंद भरी सी, जिसमें उजियाली रातें लुटते घुलते मिश्री सी। इस विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि छायावादी काव्य का जितना भी भाव वैभव है और छायावादी अभिव्यक्ति के जितने भी प्रकार हैं, वे सभी महादेवी के काव्य में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने काव्य को छायावादी सौंदर्य चेतना द्वारा मंडित करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया है और इसमें पूर्णतः सफल हुई है। यही कारण है कि समीक्षक उन्हें छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। महादेवी के काव्य की छायावादी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने ठीक ही लिखा है कि महादेवी के काव्य में हमको छायावाद का शुद्ध अमिश्रित रूप मिलता है। छायावाद की अंतर्मुखी अनुभूति अशरीरी प्रेम जो वह है तृप्त न आकर अमानसल सौंदर्य की सृष्टि करता है और प्रकृति के चेतन संस्पर्श रहस्य चिंतन तितली के पंखों और फूलों की पंखुड़ियों से चुराई हुई कला और इन सबके स्वप्न सा पूरा एक वायवी वातावरण, ये सभी तत्व जिसमें घुले मिले हैं वह है महादेवी की कविता। महादेवी ने छायावाद को पढ़ा नहीं, अनुभव किया है। प्रसाद निराला महादेवी। छायावाद के कवियों में प्रसाद महादेवी जी की तुलनात्मक महत्व निर्धारित करते समय हमारे सामने कुछ विशेष तत्व आते हैं। जहाँ तक व्यक्तिकता की अभिव्यंजना का प्रश्न है, प्रसाद और निराला अद्वितीय हैं। रहस्य भावना की दृष्टि से भी प्रसाद और निराला अधिक समृद्ध हैं। प्रसाद और निराला की रहस्य भावना में दार्शनिकता की प्रधानता है। पंत की रहस्य भावना में जिज्ञासा भाव का बाहुल्य है। महादेवी ने अलौकिक आलंबन के प्रति जो मधुर कल्पना की है वह अन्य छायावादी कवियों में नहीं है। महादेवी वर्मा की मधुर कल्पना की है वह अन्य छायावादी कवियों में नहीं है। महादेवी वर्मा के रहस्य भावना नारी हृदय की कोमलता के अनुरूप होने के अतिरिक्त भव्य विराट और कल्पनामय है। लव ने वर्ती को जाना है, वर्ती ने स्नेह, स्नेह ने रज का अंचल पहचाना है। चिर बंधन में बाध इन्हें चुलने का वर दे जाना है। जहाँ तक विषाद या वेदना का संबंध है, इसका जितना विस्तृत वर्णन महादेवी की कविता में उपलब्ध होता है उतना अन्य किसी छायावादी कवि की रचनाओं में नहीं। महादेवी का वेदना साहित्य शुद्ध सेवा और साहित्य है जिसमें साधन साधना संकल्प और लोक कल्याण की भावना निहित है। कला के क्षेत्र में महादेवी जी की कविता में एक प्रमुख विशिष्टता पाई जाती है, चित्रात्मकता। शब्दों के द्वारा भाव चित्रित प्रस्तुत करने में महादेवी जी अपनी सानी नहीं रखती। तू भू के प्राणों का सतदल, झीने के मृदु स्वर्णिम तारों सी, किरणों के मिसके सर झरती, हल्के आतप में रसभीनी, सतरंगी रज बरसा करती, सतरंगी रज बरसा करती, निर्झर में बहता मधु अविरल। सारांश यह है कि महादेवी वर्मा के काव्य में छायावाद की समस्त विशेषताएं मिलती हैं। वे छायावाद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती हैं। महादेवी वर्मा और छायावाद प्रायः अभिन्न है। पंडित विनय मोहन शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जन्म दिया है। महादेवी की काव्य सारांश यह है कि महादेवी वर्मा में छायावाद की समस्त विशेषताएं मिलती हैं। महादेवी वर्मा के ऊपर अगला प्रश्न इस तरह से है, महादेवी की काव्यकला की समीक्षा कीजिए, अथवा महादेवी की कविताओं की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, अथवा महादेवी की कविता मार्मिक और हृदयग्राही होने के साथ ही कलात्मक है, इस कथन की विवेचना कीजिए, अथवा गीत काव्य लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली वैसी और किसी को नहीं, इस मत की समीक्षा कीजिए। साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में दुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। गीत की इस परिभाषा के आधार पर महादेवी के गीत काव्य का विवेचन कीजिए, अथवा गीतकार की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य की समीक्षा कीजिए, अथवा काव्य वास्तव में मानव के सुख दुखात्मक संवेदनों की ऐसी कथा है जो उन्हें संपूर्ण परिवेश के साथ दूसरे के अनुभूति का विषय बना देती है। महादेवी के काव्य के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत गीत काव्य की समृद्धि में महादेवी वर्मा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानव सुख दुख की संवेदनात्मक अनुभूति है। महादेवी वर्मा के गीत काव्य में हमको एक निश्चित विकास क्रम दिखाई देता है। निहार में वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, भाव कम और शब्दों के बाहुल्य की प्रवृत्ति है। निर्जा तक आते आते उनके भावों और भाषा में मैत्री स्थापित हो जाती है, अर्थात भाव और भाषा के मध्य एक सुखद संतुलन स्थापित हो जाता है। दीप शिखा में उनका काव्य पूर्ण प्रवणता को प्राप्त हो जाता है वह थोड़े शब्दों से शब्दों में गहरे भावों को सहज रूप में व्यक्त करने की सामर्थ्य गागर सागर में भरने की स्थिति को प्राप्त होती हैं। गीता या संगीतात्मकता। गीता का प्रमुख तत्व है, महादेवी जी ने स्वयं भी इस तत्व की महत्ता को स्वीकार किया है। गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। महादेवी जी के गीतों में हमको गीता का पूरा पूरा निर्वाह दिखाई देता है। गीता के लिए स्वर का संगीत और शब्द संगीत और शब्द इन दोनों साधनों का आश्रय लिया जाता है। अपने गीतों में महादेवी जी ने दोनों ही साधनों का समर्थ प्रयोग किया है। महादेवी जी का वर्ण विन्यास बहुत ही लयात्मक और भावानुरूप है। यह विषमता उनके अनेक गीतों में दृष्टव्य है। सपने जगाती आ, श्याम चंचल, स्नेह उर्मिल, तारकों से चित्र उज्ज्वल, घिर घटा सी चाप से पुलके उठाती आ, सपने जगाती आ। सारांश यह है कि महादेवी की कृतियों में हमें ध्वन्यात्मक और संगीतात्मक से युक्त प्रचुर गीत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उन्होंने अपने गीतों में गीता का पूरा पूरा ध्यान रखा है। इनकी दृष्टि शब्द संगीत पर विशेष रूप से रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने महादेवी जी के गीतों की गीता का विश्लेषण करते हुए ठीक ही लिखा है कि स्वर तंत्रियों में गुंफित कोमल शब्दावली रेशम पर मोती की भांति ढुलकती जाती है। व्यक्ति तत्व की प्रधानता अथवा व्यक्तिकता तथा आत्मव्यक्ति। अन्य अनेक समीक्षकों के अनुसार महादेवी जी के गीतों में व्यक्ति तत्व की प्रधानता देती है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने आत्माभिव्यक्ति को गीत काव्य की सच्ची अभिव्यक्ति व्यंजन माना है। उनके अधिकांश गीत में आत्मनिवेदन ही झलकता है। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण वह निठुर दीपक हूँ। कुछ आलोचकों ने इनके गीतों में सामंजस्य स्थापित करते हुए ठीक ही कहा है कि निहार, रश्मि, निर्जा और दीपशिखा आदि स्फुट गीतों के संग्रह मात्र नहीं वरन इनमें कवित्री के जीवन व्यथा की एक रूपता है। निहार के उल्लास, निर्जा के विषाद और दीपशिखा के अकंप विश्वास को देखकर यह कल्पना निराधार नहीं कही जा सकती। इनके गीतों में इनका व्यक्तित्व पूर्णतः मुखरित हुआ है। व्यक्तित्व विकास के अनुरूप अभिव्यक्ति के स्वर भी बदलते गए हैं। भाव प्रवणता एवं अंत स्फूर्ति, गीत भावावेश की सहज अभिव्यक्ति होता है, अतएव उसमें भाव प्रवणता एवं अंत स्फूर्ति का आ जाना अत्यंत स्वाभाविक होता है।